एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है एकत्र ज्ञान गोष्ठी में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो मुश्किल हालात में कह सकते हैं कि रास्ता दिखाने का दावा करती है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि भाई रुकावटें जो हैं वो असल में मौके हो सकती हैं।
हाँ बिल्कुल, और ये किताब है रायन हॉलिडे की द ऑब्स्टिकल इज द वे। ये सीधे सीधे जो प्राचीन स्टोइक दर्शन है ना उससे प्रेरणा लेती है और ये सिखाती है कि कैसे जिंदगी की चुनौतियां हमारी परेशानियां असल में हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना?
बिल्कुल, थोड़ा उल्टा सा लगता है, पर आजकल जिस तरह की अनिश्चितता और मुश्किलें हम सब झेल रहे हैं, चाहे वो काम की जगह हो, रिश्तों में हो या बस रोज की जिंदगी में, ये विचार शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। ये किताब सिर्फ हौसला नहीं देती बल्कि एक तरीका बताती है कि मुश्किलों से डर कर रुकने के बजाय उनका इस्तेमाल करके और बेहतर कैसे बने।
सही कहा, तो चलिए आज इसी सोच को जरा और समझते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है।
हाँ बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले लेखक रायन हॉलिडे के बारे में जानना दिलचस्प है। वो कोई प्रोफेसर या पुराने जमाने के दार्शनिक नहीं है, वो एक लेखक है, मार्केटर है, उद्यमी है, और उनकी खासियत यह है कि उन्होंने सदियों पुराने स्टोइक ज्ञान को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए आसान और इस्तेमाल करने लायक बनाया है।
सही कहा, और उनका सफर भी देखा जाए तो काफी अलग रहा है। सिर्फ 19 साल की उम्र में कॉलेज छोड़कर वो मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन के साथ काम करने लगे।
अरे हाँ, वही जिन्होंने द 48 लॉज ऑफ पावर लिखी है।
हाँ वही। बाद में अमेरिकन अपैरल जैसी कंपनी में मार्केटिंग हेड के तौर पर उन्होंने असली कॉर्पोरेट संकट देखे, मतलब बड़ी मुश्किलें झेली।
और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है ना? उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़कर ये सिद्धांत नहीं सीखे बल्कि उन मुश्किल हालात में उन संकटों से जूझते हुए इन स्टोइक विचारों को आजमाया, इस्तेमाल किया।
बिल्कुल, तो उनका नजरिया सिर्फ किताबी नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है। वो पुराने ज्ञान और आज की चुनौतियों के बीच यूं समझिए एक पुल की तरह हैं।
ये अनुभव उनकी बातों को वजन देता है।
हाँ, वो सिर्फ क्या सोचना चाहिए नहीं बताते बल्कि कैसे करना चाहिए इस पर ज्यादा जोर देते हैं। उन लोगों के लिए जो सिर्फ जानना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, ये बहुत काम का है।
सही बात है। तो फिर आते हैं किताब के मूल विचार पर। जैसा हमने शुरू में कहा, जो रास्ते में आता है वही रास्ता बन जाता है। द ऑब्स्टिकल इज द वे, ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है पर यही किताब का मतलब दिल है।
हाँ, इसका मतलब है कि जिंदगी में आने वाली हर रुकावट, हर परेशानी, हर नाकामी वो अपने आप में एक मौका छुपाए होती है।
किस चीज का मौका?
सीखने का, मजबूत बनने का, कुछ नया करने का। किताब कहती है कि कामयाब लोग मुश्किलों के बावजूद कामयाब नहीं होते बल्कि अक्सर मुश्किलों की वजह से होते हैं। वो मुश्किलों को एक अलग नजरिए से देखना सीख लेते हैं।
और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या अच्छी अच्छी बातें नहीं है। हॉलिडे ने स्टोइक दर्शन के आधार पर एक पूरा फ्रेमवर्क दिया है, एक ढांचा। इसके तीन हिस्से हैं। पहला है परसेप्शन, यानी हमारा नजरिया, हम चीजों को देखते कैसे हैं। दूसरा है एक्शन, यानी हमारा कर्म, हम करते क्या हैं।
सही।
और तीसरा है विल, यानी हमारी इच्छा शक्ति, मुश्किलों को सहने और उनसे पार पाने का हमारा संकल्प।
बिल्कुल, ये तीनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिससे किसी भी मुश्किल को संभाला जा सकता है और शायद उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और अपनी बात साबित करने के लिए हॉलिडे ने इतिहास से ढेरों उदाहरण दिए हैं। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस से लेकर उद्योगपति जॉन डी रॉकफेलर, पायलट अमेलिया एयरहार्ट, आविष्कारक थॉमस एडिसन तक।
हाँ, मैंने भी देखा।
इन सब ने भयानक मुश्किलों का सामना किया और उन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बनाया।
तो चलिए इन तीन हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला है परसेप्शन, यानी धारणा का अनुशासन।
जी।
ये पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। यहाँ मुद्दा ये है कि कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। ये हमारा नजरिया है, हमारी सोच है जो उसे अच्छा या बुरा बनाती है। हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखकर चीजों को वैसे देखना सीखना है जैसी वो हैं, ना कि जैसी हम चाहते हैं या डरते हैं कि वो होंगी।
बिल्कुल, इसका एक बहुत मशहूर उदाहरण जॉन डी रॉकफेलर का है। 1857 में अमेरिका में भयानक आर्थिक मंदी आई थी। सब डर रहे थे, अपनी कंपनियां औने पौने दाम पर बेच रहे थे, घबराहट का माहौल था।
हाँ।
रॉकफेलर उस वक्त जवान थे, लेकिन उन्होंने इस डर के माहौल को एक मौके की तरह देखा।
मौके की तरह कैसे?
सस्ती कीमतों पर संपत्ति और कंपनियां खरीदने का मौका। उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और स्थिति का मतलब वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस।
मतलब सोचिए, जहां सब बर्बादी देख रहे हैं वहां उन्होंने शुरुआत देखी। ये है परसेप्शन की ताकत।
हाँ,
ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है बल्कि हालात को बिना भावुक हुए समझना है।
सही कहा। और सिर्फ भावनाओं पर काबू पाना ही काफी नहीं, अपना नजरिया बदलना भी जरूरी है। वो जर्मन जनरल रोमल का उदाहरण भी है। रेगिस्तान में लड़ाई के दौरान जब दुश्मन ने उन्हें घेर लिया,
हाँ हाँ,
तो घबराने के बजाय उन्होंने सोचा, अरे वाह, हाँ, अब मैं उन पर हर तरफ से हमला कर सकता हूँ। उन्होंने विपत को अवसर में बदल दिया।
है ना कमाल की सोच। लेकिन सिर्फ सोचने या नजरिया बदलने से तो काम नहीं चलेगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर दूसरा अनुशासन आता है, एक्शन यानी क्रिया। एक बार जब आपने स्थिति को सही नजरिए से देख लिया तो फिर सही कदम उठाना जरूरी है। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि सिर्फ सोचे नहीं बल्कि काम करें, लगातार, बिना रुके और समझदारी से।
इसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधी सी बात से होती है, चल पड़े।
गेट मूविंग।
हाँ, अक्सर हम मुश्किलों को देखकर सोचते रह जाते हैं, प्लान बनाते रह जाते हैं या डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाते, है ना?
हाँ, बिल्कुल। वो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। हॉलडे कहते हैं कि इस पैरालिसिस से बाहर निकलो, छोटे मैनेजेबल कदम उठाना शुरू करो, भले ही रास्ता पूरी तरह साफ ना दिखे।
एक्शन लेने से ही रास्ता साफ होता है।
सही। और इसमें एक और चीज बहुत जरूरी है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। थॉमस एडिसन का बल्ब बनाने वाला किस्सा तो सब जानते हैं। कहते हैं उन्होंने हजारों बार कोशिश की, हजारों बार फेल हुए।
हजारों बार?
हाँ। उनसे किसी ने पूछा भी कि आप इतनी बार फेल हुए, थकते नहीं? उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस हजारों ऐसे तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। सोचिए
क्या बात है।
ये जिद नहीं थी, ये प्रोसेस पर भरोसा था।
हजारों बार, वाकई हिम्मत चाहिए इसके लिए। इसी से जुड़ा एक और अहम आइडिया है, फॉलो द प्रोसेस। अक्सर हम बड़े लक्ष्य या बड़ी मुश्किल को देखकर घबरा जाते हैं।
हाँ।
स्टोइक्स कहते हैं कि उस अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देने के बजाय उस तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे काम अभी करने जरूरी हैं, उन पर फोकस करो।
बिल्कुल।
जैसे वो फुटबॉल कोच निक सैबिन अपनी टीम को सिखाते हैं, सिर्फ अगले प्ले पर ध्यान दो, मैच जीतने की चिंता मत करो, अगर हर छोटा कदम सही होगा तो नतीजा खुद बखुद सही हो जाएगा।
सही बात है।
और इसमें व्यावहारिकता मतलब प्रैग्मेटिज्म भी बहुत जरूरी है।
हाँ, बिल्कुल। हमेशा सबसे अच्छा या सबसे आदर्श तरीका काम नहीं करता। अमेरिकी गृह युद्ध के जनरल यूलिसिस एस ग्रांट शायद सबसे स्मार्ट रणनीतिकार नहीं थे।
अच्छा।
हाँ, लेकिन वो लगातार दुश्मन पर दबाव बनाते रहे, जो भी तरीका काम करता था उसे अपनाया और आखिरकार जीत हासिल की। कभी कभी बस टिके रहना और जो जरूरी है वो करते रहना ही काफी होता है।
और एक और रणनीति है इसमें, बाधाओं को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना।
हाँ, जैसे जूडो में होता है।
बिल्कुल, जैसे जूडो में सामने वाले की ताकत का ही इस्तेमाल करके उसे गिरा दिया जाता है।
हाँ।
मुश्किलों में भी ऐसा हो सकता है, कोई आपकी आलोचना कर रहा है, उसे अपनी कमियों को समझने और सुधारने के लिए इस्तेमाल करें।
सही।
संसाधन कम है, यही आपको ज्यादा क्रिएटिव और कुशल बनने पर मजबूर करेगा।
तो परसेप्शन से हमने नजरिया बदला, एक्शन से हमने सही कदम उठाए। अब आता है तीसरा और आखिरी अनुशासन, विल यानी इच्छा शक्ति। ये हमारी अंदरूनी ताकत, हमारी सहन शक्ति के बारे में है, खासकर उन हालात के लिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जो हमारे काबू से बाहर है।
हाँ, और जिंदगी में ऐसी चीजें तो होंगी ही।
बिल्कुल।
यहाँ लेखक बात करते हैं आंतरिक किला यानी इनर सिटेडल बनाने की।
सही।
ये एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक मजबूती है जिसे बाहर की कोई चीज भेद न सके।
हाँ।
रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जो खुद एक स्टोइक दार्शनिक थे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने भयानक युद्ध, महामारी, विश्वासघात, निजी दुख सब झेला, लेकिन अपने अंदर की शांति और उसूलों को बनाए रखा।
कमाल है।
ये किला ईंट पत्थर का नहीं, हमारे अंदर के संकल्प का बनता है।
और इस किले को मजबूत करने का एक तरीका है पूर्वानुमान या प्रेमेडिटेशो मल्लोरम का अभ्यास।
ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना?
हाँ, मतलब जानबूझकर बुरा सोचना।
हाँ, एक तरह से इसका मतलब है जानबूझकर सोचना कि क्या क्या बुरा हो सकता है, सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है। मकसद दुखी या निराश होना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से तैयार होना है।
अच्छा, तैयारी के लिए।
हाँ, ताकि जब कोई मुश्किल आए तो हम एकदम से हिल ना जाएं, हमें झटका ना लगे। ये एक तरह की मेंटल फायर ड्रिल है।
दिलचस्प। तैयारी के साथ साथ स्वीकृति एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। स्टोइक्स इसे एक्विएसेंस कहते हैं, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना। और इससे भी एक कदम आगे है अमोर फाती, यानी भाग्य से प्रेम।
भाग्य से प्रेम ये क्या है?
इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो हुआ उसे मान लो, बल्कि ये समझना कि जो कुछ भी होता है, अच्छा बुरा मुश्किल आसान, वो सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हमें वही बनाता है जो हम है। उसे गले लगाना, उससे सीखना, ये हार मानना नहीं है, ये असलियत को समझकर आगे बढ़ना है।
हाँ, ये बहुत गहरा विचार है।
हाँ, और अंत में दृढ़ता, पर्सिवरेंस तो है ही। अब्राहम लिंकन की कहानी याद आती है, जिंदगी भर नाकामयाबी देखी, गहरे डिप्रेशन से जूझे, देश गृह युद्ध की आग में जल रहा था,
कितनी मुश्किल है।
हाँ, लेकिन उनका एक मकसद था, देश को बचाना, और उस मकसद के लिए उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें टूटने नहीं दिया। ये विल ही है जो हमें तब खड़ा रखती है जब लगता है कि सब खत्म हो गया।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस किताब से कुछ बहुत जरूरी संदेश या सीख निकल कर आती हैं, क्यों?
हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो बातें सबसे ज्यादा असर करती हैं वो ये हैं। पहला तो वही मूल मंत्र, रुकावटें ही रास्ता हैं। हर मुश्किल में एक मौका छिपा है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए।
जैसे ऑफिस में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट मिला, ये नई स्किल सीखने का मौका है।
सही। दूसरा, आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है, परसेप्शन इसकी। हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते, पर उन हालात को हम कैसे देखते हैं, उन पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है।
हाँ, यही हमारी असली ताकत है। क्या ये एक मुसीबत है या एक चुनौती?
बिल्कुल। तीसरा, पहचाने कि क्या आपके वश में है और क्या नहीं, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। अपनी सारी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं, आपकी सोच, आपके काम, आपकी आदतें।
और जो वश में नहीं है?
हाँ, जो आपके वश में नहीं है, जैसे मौसम, ट्रैफिक या दूसरे लोग क्या कहते हैं, उसे स्वीकार करना सीखें। इससे बहुत सुकून मिलता है, खासकर हमारे देश में जहां बहुत सी चीजें हमारे काबू से बाहर लगती हैं।
हाँ, ये तो है। चौथा, प्रक्रिया पर ध्यान दें, नतीजे पर नहीं। फोकस ऑन द प्रोसेस, छोटे सही कदम उठाते रहे, नतीजे अपने आप आएंगे या नहीं ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, पर सही कोशिश करना हमारे हाथ में है।
जैसे परीक्षा की तैयारी करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट नहीं।
सही कहा।
और पांचवा, अंदर से मजबूत बने, बिल्ड योर इनर सिटेडल। असली ताकत बाहरी हालात या सफलताओं में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक मजबूती, शांति और संतुलन में है। यही हमें किसी भी तूफान में संभाले रखती है।
अच्छा, किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो सीधे दिल पर लगती हैं। एक तो वही जो किताब का टाइटल भी है, कार्य में बाधा कार्य को आगे बढ़ाती है, जो रास्ते में खड़ा होता है वो रास्ता बन जाता है। इसका मतलब है कि रुकावटें हमें रोकती नहीं, वो हमें नया रास्ता खोजने पर, ज्यादा क्रिएटिव बनने पर मजबूर करती हैं।
बिल्कुल। और ये वाली पंक्ति भी बहुत गहरी है, ये चुने कि आपको चोट नहीं पहुंची है और आपको चोट महसूस नहीं होगी, चोट महसूस न करें और आपको चोट पहुंची ही नहीं है।
हाँ,
हमें तब तक दुखी नहीं कर सकती जब तक हम अपनी सोच से उसे इजाजत न दें।
और ये सरल सी बात कितनी काम की है, हमारे वश में क्या है, हमारे वश में क्या नहीं है, बस ये याद रखने से ही आधी परेशानियां कम हो सकती हैं। अपनी एनर्जी सही जगह लगाना सीखें।
हाँ, और आखिर में ये पंक्ति सब कुछ समेट देती है, उद्देश्यपूर्ण निर्णय अभी इसे क्षण, निस्वार्थ क्रिया अभी इसी क्षण, सभी बाहरी घटनाओं की इच्छुक स्वीकृति अभी इसी क्षण, बस आपको इतना ही चाहिए।
वाह।
यानी सही सोच परसेप्शन, सही काम एक्शन, और सही स्वीकृति विल, और वो भी कब, अभी इसी पल में। यही मुश्किलों से निपटने का सार है।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई, या कोई रिश्ता टूट गया, या सेहत की कोई बड़ी समस्या आ गई, तब क्या?
हाँ, यहीं पर ये सिद्धांत असली परीक्षा देते हैं, और किताब कहती है कि ये पूरी तरह मुमकिन है। उदाहरण के लिए, अगर नौकरी चली जाती है तो उसे एक अंत की तरह देखने के बजाय ये सोचने का मौका है कि क्या मैं कुछ और करना चाहता था, क्या कोई नई स्किल सीख सकता हूँ।
अच्छा, मतलब परसेप्शन बदलना।
हाँ, फिर नई नौकरी के लिए अप्लाई करना या कोर्स ज्वाइन करना, ये हुआ एक्शन। और इस मुश्किल दौर में हिम्मत बनाए रखना, ये हुआ विल।
या मान लीजिए किसी का बॉस बहुत मुश्किल है, या कोई सहकर्मी परेशान करता है, आप उन्हें तो बदल नहीं सकते, वो आपके वश में नहीं है।
सही।
पर आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं, ये आपके वश में है। आप सोच सकते हैं कि ये मेरे धैर्य और प्रोफेशनल तरीके से बात करने की क्षमता का टेस्ट है, ये परसेप्शन हुआ।
हाँ, और फिर शांति से अपना काम करते रहें और सही तरीके से अपनी बात रखें। ये एक्शन हो गया।
सही।
कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, इसे अपनी नाकामी मानने के बजाय इसे सीखने का मौका समझें। ये परसेप्शन है। ईमानदारी से देखें कि क्या गलत हुआ, क्यों हुआ और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। ये एक्शन हुआ।
और ये सीख आपको आगे काम आएगी। ये विल हुई।
बिल्कुल।
कोई डर है, जिसे पब्लिक में बोलने का डर, उससे भागने की बजाय उसे स्वीकार करें और छोटे कदम उठाएं। पहले दो दोस्तों के सामने बोलें, फिर छोटी मीटिंग में, फिर बड़ी ऑडियंस के सामने। ये एक्शन है।
हाँ, धीरे धीरे।
और हर कदम आपकी हिम्मत बढ़ाएगा। ये विल है।
सही। या कोई स्वास्थ्य समस्या आ गई, जो हो गया उसे स्वीकार करना, ये विल है। फिर डॉक्टर की सलाह मानना, लाइफस्टाइल बदलना, पॉजिटिव रहना, यानी उन चीजों पर फोकस करना जो आपके कंट्रोल में है। ये एक्शन और परसेप्शन हो गया।
तो कुल मिलाकर मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये है कि मुश्किलों से डरने या भागने की जरूरत नहीं है। उन्हें देखने का नजरिया बदलकर हम उन्हें अपने विकास का साधन बना सकते हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है, परसेप्शन एक्शन विल, जिसे हम किसी भी चुनौती में इस्तेमाल कर सकते हैं।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि हम हालात के गुलाम नहीं हैं। हमारी असली आजादी हमारी प्रतिक्रिया चुनने में है। बाहरी चीजें आती जाती रहेंगी, पर अगर हमारा आंतरिक किला मजबूत है तो हम स्थिर रह सकते हैं।
हाँ।
शायद सच यही है कि बाधाएं सिर्फ जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, वो जिंदगी को बनाती हैं। हम उन्हीं से सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं।
वाकई एक ताकतवर नजरिया। और शायद यही वो आखिरी सवाल है जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। अगली बार जब कोई रुकावट सामने आए तो एक पल रुक कर सोचें, इसमें मेरे लिए क्या मौका छिपा हो सकता है, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है।
सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।